जय भवला पुस्तक 12वीं लेक्चर नंबर 10। ओम
नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम सुतात्मने नमो अरिहंता नमो सीतानं नमो आयज्ञानं नमो वज्जायानं नमो लोये सवसाहूनं जेते केवलदंशन नानुवजोगे जुगवदुवजुता ोपणमीय कोमनियोगम।
यह श्री भीमसेन आचार्य रचित जय भवला टीका है जो कसाय पावर तथा सुनिश्चित ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता हैं गंगर भट्टारक तथा यति सब आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की। 12वीं पुस्तक जो उपयोग नाम का अर्थाधिकार है, उसमें भी हम कृष्ण संख्या 122 नहीं कितने हो गए 116 पर आ गए। 10 नंबर ही बोले पुस्तक 12वीं लेक्चर 10 और कृष्ण संख्या 116 116। अब यहाँ जो हम ये बात देख रहे थे, देखो ये बात सातवीं गाथा क्या अर्थ चल रहा था। हाँ हाँ देखो देखो 109 से ये विषय शुरू हुआ था। उपयोग वर्गणाएं दो प्रकार की। गाथा में क्या पूछा था कि कौन कितनी उपयोग वर्गणाएं, कौन स्थान जीवन से अविरहित और विरहित है, यानी उससे सही थे और रहित है। वहाँ उसको समझाने के लिए कहा था उपयोग वर्गणाएं दो प्रकार के हैं, कथा है उदय स्थान और उपयोग अध्यास, और उन दोनों ही प्रकार के स्थानों को उपयोग वर्गणा के लिए, यानी उपयोग वर्गणा में दो प्रकार, कथा है उदय स्थान को भी उपयोग वर्गणा कहेंगे और जो अध्यास स्थान है उपयोग अध्यास स्थान है उसको भी उपयोग वर्गणा कहेंगे। अब उसमें पूछा गया था कि उपयोग अध्यास स्थानों में कौन से स्थान रहित है और कौन से स्थान सहित है, और उसमें भी गति गति की बात उन्होंने पूछी। 111 पृष्ठ पर हमने सूत्र पढ़ा था कि नरक गति में एक जीव के क्रोध कषाय संबंधी उपयोग अध्यास स्थानों में नाना जीवों की अपेक्षा योग में जो होता है, एक जीव की अपेक्षा अन्य अन्य कालों में अगर हम देखते हैं तो जगह में से लेकर उत्कृष्ट तक पूरी एक पंक्ति हमने रचना करें, नाना जीवों की अपेक्षा यानी कहाँ कितने जीव है, कौन से स्थान में कितने जीव पाए जाते हैं किसी समय में, तो जघन्य स्थान में थोड़े हैं, उसके एक समय अधिक वाले में थोड़े ज़्यादा है, थोड़े ज़्यादा है, थोड़े ज़्यादा है, तो जाते यह बंदे होता है और फिर ऊपर टेपरिंग होता है, फिर जीवों की संख्या कम होती चली जाती है ऊपर ऊपर के आधा स्थानों में, तो उसको यवो मध्य कहा था। परंतु ये यवो मध्य एग्जैक्ट सेंटर में नहीं है,
थोड़ा
देखो देखो थोड़ा थोड़ा वृद्धि होते 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 वो तो दो गुना होता है, इसको द्विगुण वृद्धि कहेंगे। जैसे द्विगुण वृद्धि का एक स्थान हुआ, द्विगुण वृद्धि का दूसरा स्थान हुआ, तीसरा स्थान हुआ, ऐसे करते करते जितने द्विगुण वृद्धि के स्थान होते हैं यवो मध्य तक, उससे भी ऊपर के जो है वो संख्या गुण है, यानी यवो मध्य नीचे की ओर है सेंटर का पॉइंट है और ऊपर और नीचे वो टेपरिंग है। तो वहाँ ये बात बताई थी कि जगत में उपयोग स्थान में जीव कितने हैं, तो असंख्या जगत श्रेणी प्रमाण कषाय उदय स्थान में आवली के असंख्याते भाग में पाए जाते हैं और ये अध्यास स्थानों में असंख्या श्रेणी प्रमाण है। तो उसके ऊपर के स्थान में कितने होते हैं उसका ही असंख्या का भाग अधिक होता है, ऐसे बढ़ते बढ़ते दो गुना हो जाते हैं। फिर और बढ़ते बढ़ते फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते और उससे दोगुना होते हैं, इस तरह से द्विगुना द्विगुना होते चले जाते हैं। वो तो हमने पढ़ा था, यानी नीचे जितने स्थान हैं उससे ऊपर के स्थान संख्यात गुणा है, ये बात हमने देखी थी। अब ये जो एक गुणहानि स्थान कहो या ये सुवृद्धि स्थान कहो या हानि स्थान कहो, गुणहानि यानी यहाँ डबल होता है, या यव मध्य से ऊपर हम हानि वाला स्थान कहेंगे, यव मध्य से नीचे हम सुवृद्धि वाला स्थान कहेंगे, तो उसका प्रमाण कितना है? तो ये बात 113 पृष्ठ पर लिखी थी। वो तो अवस्थित रूप से आवली के वर्गमूल के असंख्यात भाग करना, उसको भी आवली का असंख्यात भाग कहेंगे, परंतु उसकी एग्जैक्ट फिगर क्या बोला है, आवली के वर्गमूल का असंख्यात भाग। उसमें एक बात और उन्होंने बताई, दो उपदेश है, दोनों ही उपदेश में नीचे के स्थान तो सभी गुणहानि स्थानांतर जो है, यानी सभी गुणहानियाँ जो है वो हमेशा ही जीवों से अपूर्ण है, वहाँ जीव पाए जाएंगे हर गुणहानि में, और ऊपर के कभी ऐसा होता है कि सभी में है, वो उत्कृष्ट रूप कहा था, परंतु कभी कभी संख्यात में भाग प्रमाण गुणहानियों में भी जीव पाए जाए, नहीं वजनीय कहेंगे मगर, परंतु अधिक अपूर्ण होते हैं वहाँ जीव पाए जाते हैं, यानी गुणहानियों में तो है परंतु गुणहानि में जितने स्थान है एक एक समय से बढ़ते हुए वो हर एक में नहीं है, ये बात बताई थी, यानी सभी अध्यस्थानों में नहीं होते परंतु सभी गुणहानियों में तो पाए जाते हैं। तो अध्यस्थानों के हिसाब से कितने अध्यस्थानों में होते तो असंख्यात बहुभाग में पाए जाते, असंख्यात भाग में नहीं होते। 115 पर बात आई थी कि एक दूसरा उपयोग दूसरा जो उपदेश है ना, ये तो हमने देखे थे, एक उपदेश को देखा, अभी अन्य उपदेश की बात यहाँ करेंगे जो 116 पृष्ठ पर है, यानी अभी तक जो हमने देखा उपदेश वो प्रवाह्यमान है, इसमें क्या बताया था, नीचे की गुणहानियाँ हमेशा जीवों से अपूर्ण है सभी गुणहानियाँ, और ऊपर की गुणहानियाँ संख्यात्व भाग प्रमाण अपूर्ण है और अधिक से अधिक, यानी वो तो जघन्य पर है, और उत्कृष्ट रूप से सभी गुणहानियाँ अपूर्ण है। अब यहाँ हम 116 पृष्ठ पर आए हैं, नीचे का पैराग्राफ, अन्नो उपदेश ऊपर पहले सूत्र पढ़ेंगे, अन्नो उपदेशो सव्वानी गुणहानि स्थानांतराणि अविरहियानि जीवेहि, वजोगद्ध स्थानानम असंख्येता भागा अविरहिता, विरहित यानी उससे रहित और अविरहित यानी सहित। अन्य उपदेश है कि सब गुणहानि स्थानांतर जीवों से युक्त है, नीचे के ऊपर के सब, तथा उपयोग अध्या स्थानों का असंख्यात बहुभाग जीवों से युक्त है। एक तो होती है गुणहानि में, और एक एक गुणहानि में जो असंख्यात अध्यस्थान होते हैं तो उसमें कहते हैं कि असंख्यात बहुभाग है वो जीवन से युक्त होता है, परंतु गुणहानि की तरफ देखेंगे तो हर एक गुणहानि में जीव है ही है। अब उसका स्पष्टीकरण पढ़ते हैं, प्रवाह्यमान से अन्य जो उपदेश है वह अप्रवाह्यमान उपदेश है, उसके अनुसार यानी अभी जो हम देख रहे हैं वो अप्रवाह्यमान उपदेश जीवों से रहित और सहित स्थानों का कथन करने पर यव मध्य से पूर्व के और आगे के सभी स्थान भेद के बिना इस प्रकार के होते हैं, यह उक्त सूत्र का तात्पर्य है। प्रवाह्यमान उपदेश में हमने देखे थे नीचे के तो सभी अपूर्ण होते हैं परंतु ऊपर के जघन्य रूप से संख्या से भाग प्रमाण और उत्कृष्ट रूप से सभी जीवन से अपूर्ण होते हैं। अब यहाँ कहते हैं कि उनमें ऐसा कोई भेद नहीं है, अन्य सब कथन सुगम है, क्योंकि यव मध्य से पूर्व की और बाद की प्ररूपणा का व्याख्यान समान है, यानी इसमें तो कुछ कहने की बात ही नहीं है क्योंकि सभी अपूर्ण है ये बात होती है, और अध्यास्थान असंख्यात बहुघात प्रमाण अपूर्ण है जीवन से, ये भी बात बता दी। अब इस अर्थ पद के अनुसार यहाँ यवमध्य की प्ररूपणा करने पर उस विषय में प्ररूपणा से लेकर अल्प बहुत्व तक के ये छह अनुयोग द्वार ज्ञातव्य हैं। प्ररूपणा के अनुसार प्रसंग करने पर जघन्य उपयोगाध्या स्थान में जीव है, दूसरे उपयोगाध्या स्थान में जीव है, इसी प्रकार यावत उत्कृष्ट उपयोगाध्या स्थान में जीव है, ये उसकी प्ररूपणा होती है। प्रमाण अनुयोग द्वार के अनुसार प्रसंग करने पर जघन्य उपयोगाध्या स्थान में जीव कितने हैं, तो कहते असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण। दूसरे भी उपयोग अध्या स्थान में जीव असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है। इसी प्रकार उत्कृष्ट उपयोग अध्या स्थान तक जानना चाहिए, यानी कषाय उदय स्थान में आवली के असंख्यात भाग प्रमाण होते हैं एक किसी स्थान में, और यहाँ एक एक स्थान में कितने होते, तो असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण। इस अर्थ पद के अनुसार पहला तो
ये उपदेश के अनुसार सभी अध्या स्थानों में असंख्या जगत श्रेणी प्रमाण जीव होते हैं।
सभी अध्या स्थान नहीं, वैसे तो उपयोग अध्या स्थानों का असंख्या बहुभाग जीवों से युक्त बताया,
तो यदि ये दूसरा उपदेश के अपेक्षा सभी स्थानों में
अध्या स्थानों में जीव अगर पाए जाएंगे तो कितने होंगे
असंख्या जगत श्रेणी,
असंख्या जगत श्रेणी। अब कहते श्रेणी प्ररूपणा दो प्रकार की, श्रेणी यानी पंक्ति। अब इनको हम यानी जघन्य से उत्कृष्ट तक ऐसे हम एक श्रेणी बनाएंगे और उसमें जीव कितने उसकी बात वहाँ लिखेंगे। तो पहले हमने जैसे लिखे थे तो उसमें क्या हुआ था, यह वो मध्य की रचना हुई। अब यहाँ भी क्या होता है उसकी बात करेंगे। हाँ, प्रवाह मानते नहीं, यहाँ भी यह मध्य है उसमें तो इतनी बात है कि नीचे और ऊपर की जो गुणश्रेणियाँ हैं गुणहानियाँ हैं सभी में जीव है, बस इतनी बात बताई, ये अप्रवाहन है। हाँ, एक्चुअली इतना ही हुआ है और दोनों को मिलकर श्रेणी प्ररूपना होगी ऐसा मुझे लगता है, परंतु यहाँ लिखा अब इस अर्थ पद के अनुसार, यहाँ तो लिखा ना यह मुझे व्याख्यान समान है, तो अर्थ पद कहाँ का है, यहाँ तो उपदेश हुआ अर्थपद की बात है।
यहाँ पे ऊपर लिखा है ना प्रमाण अनुयोग द्वार के अनुसार कथन करने पर जघन्य उपयोग अध्या स्थान में जीव कितने असंख्या जगत श्रेणी का, तो प्रत्येक स्थान में असंख्या जगत श्रेणी प्रमाण जीव है।
देखो देखो हमने पहले निकाली थी, ये कौन सा सहित और रहित की बात अभी यहाँ नहीं है,
अभी यह अप्रवाह में हमने उपयोग कर देश के अनुसार तो सभी में होगा ना जीव, सभी अध्या स्थान में जीव होगा,
ये भी पहले बात आई थी 111 पेज पे। नीचे का 247 पर नीचे का पड़ेगा, जघन्य उपयोग अध्या स्थान में जीव असंख्या जगत श्रेणी प्रमाण होते हैं, दूसरे भी उपयोग अध्या स्थान में जीव असंख्या जगत श्रेणी प्रमाण होते हैं, इतने तो भी जघन्य स्थान के जीवों की संख्या में आवली के असंख्या पे भाग का भाग रहने पर जो एक भाग दब रहे उसमें अधिक होते हैं, ये ऐसे अधिक करते करते वहाँ पर वहाँ उनका ये वो मध्य आया था। अब यहाँ कुछ अलग बात बता रहे हैं, उसको पढ़ेंगे हम फिर निर्णय करेंगे। हाँ, मेरे ख्याल से ये जो दूसरा जो उपदेश है उसके अनुसार वो यव मध्य कुछ अलग तरीके से आएगा। वहाँ तो कितना देखा हमने आवली का असंख्यात भाग से भाग लेकर असंख्यात का भाग अधिक है, अब यहाँ कुछ अलग प्ररूपणा करेंगे। हमने चार लाइन पढ़ी थी सारे की, अब प्रमाण अनुयोग द्वार के अनुसार कथन करने पर ये पढ़ा था, उत्कृष्ट उपयोग सात-दस स्थान तक जाना चाहिए। श्रेणी प्ररूपणा हमें शुरू की पढ़ना। श्रेणी प्ररूपणा दो प्रकार की, अनंतर उपनिधान, परम्पर उपनिधान। अनंतर उपनिधान का अर्थ होता है प्रत्येक स्थान में कितनी कितनी बढ़ोतरी है, और परंपरा उसमें हम कहीं नहीं गुण वृद्धि के स्थान है, यानी गुणहानियाँ जो कहेंगे इतने जाने के बाद डबल हुआ, फिर डबल हुआ, फिर डबल हुआ, उसको परम्परा उपनिधान कहेंगे। और अनंतर उपनिधान है हर एक स्थान में कितना बढ़ेगा उसको अनंतर उपनिधान, अनंतर है इमीडिएट नेक्स्ट। और परम्परा है इतने जाने के बाद दो गुना हुआ, फिर दूसरा जाने के बाद दो गुना, उसको परम्परा उपनिधान। तो श्रेणी प्ररूपणा दो प्रकार की है, अनंतर उपनिधान, परम्परा उपनिधान। अनंतर उपनिधान की अपेक्षा जघन्य उपयोग अध्यास स्थान में जीव सबसे थोड़े हैं, सबसे थोड़े फिर भी असंख्या जगत श्रेणी प्रमाण, उनसे दूसरे उपयोग अध्यास स्थान में विशेष अधिक है। विशेष का प्रमाण आवली के असंख्या से भाग का भाग देने पर जो लगता है उतना है, यही बात हमने पहले भी करी। इस प्रकार यौ मध्य के प्राप्त होने तक विशेष अधिक जानना चाहिए, उसके बाद उत्कृष्ट स्थान के प्राप्त होने तक विशेषहीन जानने चाहिए। ये श्रेणी की प्ररूपणा दोनों के लिए लागू होगी ऐसा लगता है। परम्परा उपनिधान की अपेक्षा विचार करना, परम्परा यानी वो जो
फिक्स नंबर होता
है, यानी गुण हानि की बात है या गुण वृद्धि की बात है। जघन्य उपयोग स्थान के जीवों से आवली के असंख्यात भाग प्रमाण स्थान जाकर, यानी पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, ऐसे जब आवली के असंख्या पे भाग स्थान पूर्ण होते हैं वे द्विगुण वृद्धि रूप हो जाते हैं। हमने देखा ना असंख्या का भाग अधिक, असंख्या का भाग अधिक, असंख्या का भाग अधिक, असंख्या का भाग अधिक के लिए क्या किया था, आवली के असंख्या पे भाग से भाग दिया। हमारे पास हम देखते हैं उसके उदाहरण के द्वारा, हमारे पास 100 है और उसमें 5-5 की वृद्धि होती है, 5-5 की वृद्धि नहीं, 5 से भाग देकर जो आता है उसकी उतनी वृद्धि, समझने के लिए आसान हो जाएगी। 100 को हमने 5 से भाग दिया तो कितने आए,
20
आए, तो 120 यहाँ पर हो गए, फिर
24
और उतने बड़े और उतने बड़े और उतने बड़े। तो हम ओरिजिनल को ही भाग देके हम समझेंगे, 100 को आवली का असंख्या तो भाग से भाग दिया, यानी यहाँ 5 से हमने भाग दिया तो 20 की वृद्धि हुई। फिर 100 को ही हम भाग देके समझेंगे तो फिर हमें उतने ही वृद्धि होगी, 20। तो कितने बार ऐसे हो गए तब जाके और 100 हो जाएंगे,
5
स्थान जाने। ऐसे यहाँ आवली के असंख्या पे भाग से भाग देकर उतनी वृद्धि हुई है तो आवली के असंख्या पे भाग प्रमाण स्थान जाने पर वो डबल होगा कि नहीं होगा, 100 के 200 हो गए ना। यहाँ पर 5 से भाग देते हैं तो वो पांचवा भाग 5 बार मिलाएंगे
तो
ओरिजिनल जितना हो जाएगा। ऐसे जघन्य स्थान में जो संख्या है कितने तो असंख्या जगत श्रेणी प्रमाण जीव है उसको आवली के असंख्या के भाग से भाग दिया उतनी वृद्धि हुई, फिर उतनी वृद्धि हुई, फिर उतनी वृद्धि हुई, तो आवली के असंख्या के भाग प्रमाण स्थान जाने पर वो दुगुना हो गया। ये बात क्लियर होगी। अब इसी प्रकार यव मध्य के प्राप्त होने तक द्विगुण वृद्धि रूप जानने चाहिए, यानी एक बार द्विगुण वृद्धि हुई, दूसरी बार हुई, तीसरी बार हुई, इस तरह से यव मध्य तक जाने। उसके बाद यव मध्य के ऊपर क्या होगा, हानि होगी। उत्कृष्ट स्थान के प्राप्त होने तक द्विगुणहीन जानने चाहिए, यानी आधा 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 होता है। यहाँ प्रकृति में 3 अनुयोग द्वार है, प्ररूपणा, प्रमाण और अल्पबहुत्व। उनमें से प्ररूपणा की अपेक्षा नाना द्विगुण वृद्धि स्थानांतर और द्विगुण हानि स्थानांतर शलाकाएं है, एक किसके बारे में चल रही बात? श्रेणी प्ररूपणा के बारे में। श्रेणी प्ररूपणा में भी हम परम्परोपनिधा देख रहे हैं। परम्परोपनिधान में क्या होते हैं? गुण हानि की या गुण वृद्धि की बात करें तो कितनी इतनी वृद्धियां है, हानियां है, इतना बता दिया, हो गई प्ररूपणा। शला कहने उनकी नंबर ऑफ गुण हानि, द्विगुण वृद्धि स्थानांतर शला का अपनी भाषा में नाना गुण हानि या नंबर ऑफ गुण हानि, तथा एक द्विगुण वृद्धि स्थानांतर और एक द्विगुण हानि स्थानांतर शला का है। यानी एक गुण हानि का प्रमाण कितना है, उसकी शला का है का अर्थ है इसका प्रमाण कितना है। हमने देखा ना अवली के असंख्या से भाग स्थान जाने पर एक गुण हानि या गुण वृद्धि हो गई द्विगुण वृद्धि, तो उसको हम शला कहते हैं। हाँ, गुण हानि का आयाम प्रमाण, पहले है बता दिया वो प्ररूप ना हुई, अब दूसरा नियोगदार प्रमाण का, तो उनका प्रमाण क्या है? तो एक द्विगुण वृद्धि स्थानांतर तथा एक द्विगुण हानि स्थानांतर एक की बात है। एक गुण हानि स्थानांतर का अर्थ होता है गुण हानि आयाम, यानी कितने स्थान जाने पर वो आधा या डबल होगा। तो कहते हैं आवली के प्रथम वर्गमूल के असंख्या पे भाग प्रमाण, ये भी बात पहले आई थी। देखो हमने अभी अभी हमने इसको याद किया था, 113 पृष्ठ निकल मूल सूत्र में। ये गुणहानि स्थानांतर अवस्थित रूप से, अवस्थित में ठीक है, उतने उतने स्थान जाने पर वो आइदर दो गुना होता है या दो गुना नहीं होता, तो उसको गुणवृद्धि स्थानांतर या गुणहानि स्थानांतर का इसका प्रमाण कितना है? आवली के वर्गमूल के असंख्या से भाग का, ये बात ख्याल में आई। अब आगे पढ़ेंगे, नाना द्विगुण वृद्धि स्थानांतर शला का, यानी एक गुण हानि का आयाम कितना है वो बता दिया। अभी ऐसी कितनी है, नंबर ऑफ गुण हानियां कितनी है, तो नाना द्विगुण वृद्धि स्थानांतर शला का है, यानी वो नीचे की, यो मध्य के नीचे, उसको क्या कहेंगे हम? द्विगुण वृद्धि। और नाना द्विगुण हानि स्थानांतर, यो मध्य के ऊपर है वो हानि रूप से है, तो उसको द्विगुण हानि कहेंगे। ये शलाकाएं कितने हैं? तो आवली के असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण, यानी प्रथम वर्गमूल को असंख्यात गुणा करो इतना। ये असंख्यात प्रथम वर्गमूल का अर्थ कैसे निकाला था? जैसे 15 की संख्या है तो उसको हमें 4 से भाग देना, तो उसका प्रमाण कितना आएगा?
15 को 4 से,
4 से भाग देना, तो 15 का पहला वर्गमूल है 256, दूसरा वर्गमूल है 16, तीसरा है 4, या हम 2 से भाग देंगे तो और क्लियर होगा, ठीक है, हम 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे 15 को, तो क्या होगा? देखो 256 गुना 256 पनट्टी है, और हमें 4 से भाग देंगे
256 गुना,
तो एक 256 को देना भाग, दूसरा 256 ऐसे ही रखो,
256 गुना 16,
64 256 आए। यदि हम 2 से भाग देते हैं और छोटी संख्या निकालनी हम, तो 2 से भाग देंगे तो ये संख्या बढ़ जाएगी
112 आ
जाएगा, जो कुछ है, यानी वो क्या है? असंख्यात प्रथम वर्गमूल हो जाएगा, असंख्यात प्रथम वर्गमूल हो जाएगा। ये जो हमने पनट्टी को 4 से भाग दिया या 2 से भाग देंगे, तो क्या उसके प्रथम वर्गमूल को कुछ संख्या से गुणित हो जाएगी? यानी 64 गुना, अभी 4 से भाग देते हैं तो 64 गुना पनर्टी का प्रथम वर्गमूल हुआ। तो बीच में जितना गैप होगा उतने वो असंख्यात का अलग स्थान हो जाएगा। पहले एक गुणहानि स्थानांतर, अभी हम इसी पर गठित करेंगे। एक गुणहानि स्थानांतर क्या है? प्रथम वर्गमूल का असंख्यात का भाग। अब यही प्रथम वर्गमूल का असंख्यात का असंख्यात के लिए हम 64 ले लेंगे। अभी वही उदाहरण लेना है तो 256 को 64 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। प्रथम वर्गमूल का असंख्यात का भाग ये 4 संख्या, और असंख्यात प्रथम वर्गमूल यानी पनर्टी को 64 से गुणा किया था हमने, यानी वो 16384 का कुछ आ जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि 200 यहाँ दो अगर रखते हैं, नहीं ज्यादा आएगा, इसका 1/4 हो जाएगा ना, 16384 आ जाएगी ये संख्या। तो इसमें इतना डिफरेंस है 16384, ये हमने संदृष्टि मान लिया। गुणहानि स्थानांतर 4 और ये इतना 16384, उससे असंख्यात गुणे होते हैं। ये नाना गुणहानि कितनी है वो समझाने के लिए, वो असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण है किसके,
आवली के असंख्यात भाग के असंख्यात प्रथम, नहीं आवली
के असंख्यात प्रथम वर्गमूल
प्रथम वर्ग,
दोनों को ही आवली का असंख्यात भाग ही कहेंगे,
वो असंख्यात भाग ही, ये असंख्यात गुणा है,
आवली के असंख्यात गुणा नहीं,
नहीं आवली के प्रथम
वर्गमूल के असंख्यात गुणा है, फिर भी वो असंख्यात भाग ही कहला है। दोनों ही कथन में आवली का असंख्यात भाग है, उसका एग्जैक्ट प्रमाण क्या है? तो एक गुणहानि का जो प्रमाण है, द्विगुणों वृद्धि को या हानि को,
प्रथम वर्गमूल का
उसका जो आयाम है, तो आवली के प्रथम वर्गमूल का असंख्यात भाग है। और ऐसी नाना गुणहानियां कितनी है नीचे और ऊपर,
असंख्यात प्रथम वर्गमूल,
असंख्यात प्रथम वर्गमूल किसका, आवली का, यानी आवली के प्रथम वर्गमूल को असंख्यात गुणा करो कितने, यहाँ तक ख्याल में ही बात अभी आ जाएगी। आवली का गुणा करो यथा योग्य असंख्या की जो कुछ है, यानी आवली का प्रथम वर्गमूल मल्टीप्लाइड बाय असंख्या, अल्पबोध ये किसमें चल रही है, अल्पबोध परम परोप निदान, एक द्विगुण वृद्धि स्थानांतर और एक द्विगुण हानि स्थानांतर सबसे स्तोक है। तो द्विगुण वृद्धि बड़ी होगी कि द्विगुण हानि स्थानांतर बड़ा होगा, समान बहुत अच्छा समान है, क्योंकि हमने देखा था आवश्यक है वृद्धि कब कहेंगे, यो मध्य से नीचे जो है वो जघन्य स्थान से लेकर बढ़ते गए हैं तो उसको वृद्धि कहेंगे, और ऊपर यो मध्य के ऊपर आधे आधे होते गए उसको हानि कहेंगे, उसका प्रमाण तो उतना ही है गुणहानि, यानी गुणहानि आयाम जिसको हम कहते हैं वो उतना ही है। अब यहाँ उसको द्विगुण वृद्धि स्थान और हानि स्थान कहेंगे, जनरली दोनों को ही गुणहानियाँ कहेंगे तो भी कुछ बात नहीं है, क्योंकि यो मध्य की ओर से दोनों तरफ देखेंगे तो हानि कहेंगे,
गुणहानि आयाम
गुणहानि कहेंगे और इसको गुणहानि आयाम कहेंगे, और ये नाना गुणहानि जो है वो नंबर ऑफ गुणहानियों को नाना गुणहानि कहेंगे। तो कहते एक गुणहानि आयाम सबसे कम है और नाना गुणहानि गुणहानियाँ उनसे असंख्यात गुण है। देखो इसको मैं फिर पढ़ती हूँ, अल्प बहुत रूप, एक द्विगुण वृद्धि स्थानांतर और एक द्विगुणहानि स्थानांतर सबसे स्तोक है, परंतु दोनों आपस में समान है, उससे नाना द्विगुण वृद्धि स्थानांतर शलाकाएँ और नाना द्विगुणहानि स्थानांतर शलाकाएँ असंख्यात गुण हैं, उनमें आपस में उन्होंने अल्प बहुत्व नहीं लगाया है, परंतु हमें मालूम है वृद्धि गए द्विगुण वृद्धि स्थानांतर शलाका वो कम होगी, और ऊपर की जो गुणहानि है वो तो उसकी संख्यात गुणा है। और यहाँ कितनी है, ये भी आवली का असंख्यात भाग ही है, उसी को आवली का प्रथम वर्ग असंख्यात प्रथम, वो भी आवली का असंख्यात भाग ही है। यही बात है वहाँ पर भी,
नहीं वहाँ पे प्रथम वर्ग का संख्या का भाग तो मैं नाना गुणा नहीं है ना,
कहाँ है दिखा,
नहीं नहीं सिर्फ
यहाँ निकालो 113 जो हमने लिखा था। सूत्र में ऊपर लिखा है एक गुण वृद्धि स्थानांतर एक गुणहानि स्थानांतर आवली के वर्गमूल के असंख्या से भाग प्रमाण, बात वही है ना। अब उसी के नीचे पांचवी लाइन में देखो, नाना गुणानि स्थानांतर शलाकाएं तो असंख्यात आवलियों के प्रथम वर्गमूल को, आवलियों को असंख्यात नहीं करना, प्रथम वर्गमूल को असंख्यात करना, यानी आवली के असंख्यात प्रथम वर्गमूल ऐसा कहो। अब यहाँ आते हैं, ये अल्पभूत हो गया। अब अवहार का कथन करते हैं, केवल डायरेक्ट नाना गुणानी शलाका कहो या शलाकाएं कहो एक ही बात, शलाका ही का अर्थ होती उसकी संख्या, शलाकाएं वो तो एक को एक शलाका कहेंगे, दो को दो शलाका, दो है शलाका, चार है शलाका, पांच है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। दोनों में इतना डिफरेंस नहीं है, दोनों ही कथन में, कथन में मूल डिफरेंस क्या है वो सब्जी अपूर्ण है कि नहीं, इतना ही कथन का डिफरेंस। अब कहते यहाँ 118 पुस्तक, अब अवहार का कथन करते, अवहार का अर्थ होता है भाग, जिस संख्या से भाग देने पर वहाँ संख्या का प्रमाण आता है, डायरेक्ट संख्या बताने के बदले भागार बताते हैं, जहाँ भागार बड़ा हो जाएगा संख्या कम होती है, जब आगार छोटा हुआ संख्या बड़ी, तो अवहार का कथन करते हैं। जघन्य उपयोग अध्यास्थान के जीवों के प्रमाण से सब उपयोग अध्यास्थानों के जीव कितने काल के द्वारा अपहृत होते हैं, कितने असंख्यात काल के द्वारा अपहृत होते हैं, अथवा पल्योपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण काल के द्वारा अपहृत होते हैं, यानी पूरे ही जो अध्यास्थान है उसको कौन सी संख्या से भाग देने पर जघन्य उपयोग स्थान के जीवों की संख्या है, तो उसको उसका अवहार काल कहते हैं। इससे आगे यवमध्य के प्राप्त होने तक भागार को विशेषहीन करके ले जाना चाहिए, इसका अर्थ समझ में आता है, भागार जहाँ विशेषहीन होता जाएगा वहाँ संख्या विशेष अधिक विशेष अधिक बढ़ेगी। पुनः यवमध्य के जीवों के प्रमाण से तीन गुणहानि स्थानांतर प्रमाण काल द्वारा अपहृत होते हैं, यवमध्य के जीवों के प्रमाण से तीन गुणहानि स्थानांतर प्रमाण काल द्वारा अपहृत होते हैं, यानी पूरे जीव जो है सभी स्थानों के,
यवमध्य के जीवों के
देखो ऊपर क्या लिखा है, जघन्य उपयोग स्थान के जीवों के प्रमाण से सब उपयोग अध्यास्थानों के जीव कितने काल द्वारा अपहृत होते
हैं, पल्योपम के असंख्यात के का,
यानी वहाँ क्या किया था,
जो जगन्य उपयोग स्थान में जो जीव है वो अब अच्छा टोटल नंबर ऑफ जीव आ गए,
टोटल नंबर ऑफ जीवों को उस भागार से भाग देने पर वहाँ की संख्या, ऐसे यहाँ टोटल नंबर ऑफ जीवों को तीन गुणहानि स्थानांतरों से भाग देंगे तो यवमध्य के जीवों को प्रमाण आएगा।
हमने एक एक उपयोग स्थान में जीव कितने देखे असंख्यात जगत श्रेणी के हमने देखी, तो ये पल्योपम के असंख्यात के भाग प्रमाण से अपहृत होते वो कुछ बेचता नहीं है ना, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे जीव की संख्या बहुत कम हो जाएगी
क्योंकि
जगन्य
टोटल जीव कितने हैं जगत प्रकरण की संख्या के
हाँ
उसको पल्ले की संख्या के बात के बारे में
अच्छा संख्या जगत रही करना जिसकी
यहाँ क्या करना है तीन गुना निस्थानांतर से बात देखो आगे पढ़ेंगे इससे आगे उत्कृष्ट स्थान के प्राप्त होने तक भागहार को विशेष अधिक करके ले जाना चाहिए यानी जीवों की संख्या घटती जाएगी ना पहले हमने भागहार को क्या किया था विशेषहीन किया नीचे से लेकर यौमध्य तक आने तक भागहार कम होता चला गया जीवों की संख्या बढ़ती गई ऊपर
तीन होती जाएगी तो भागहार कम
भागहार अब बढ़ाएंगे तो जीवों की संख्या कम होगी यहाँ पुनः उत्कृष्ट स्थान के जीवों के प्रमाण से ये पढ़ना रह गया था उत्कृष्ट स्थान के जीवों के प्रमाण से पल्लवों के असंख्यात विभाग प्रमाण काल द्वारा अपहृत होते हैं नीचे भी पल्ले का असंख्यात विभाग काल द्वारा और ऊपर भी उतना ही है यहाँ प्रत्येक स्थान पर विवक्षित काल को भागहार बनाकर ये काल के अपेक्षा उसको भागार बनाए कभी कभी अंतर्मुख बनेंगे कहीं क्या जो कुछ ऐसा ये जो संख्या होगी उसको काल में गिनेंगे इसलिए उसको अवहार काल भी कहते तो कहते एक एक स्थान पर भागार कितना होगा उसका प्रमाण निकालो कहते सब उपयोग अद्धा स्थानों के जीवों के प्रमाण को उससे भाजित कर विवक्षित स्थान की संख्या प्राप्त की गई है क्या 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 कैसे कैसे किया जो उस विवक्षित काल को भागहार बनाकर यानी वहाँ का भागहार बनाएंगे उस भागहार से किसको भाग देंगे सब उपयोग अद्धा स्थानों के जीवों के प्रमाण को ये हमने सब अद्धा स्थानों में तो हमने कृष राशि के लिए बात यहाँ पर उसको भाग देने पर
ये नारकी की बात कर रही है
नारकी की बात कर रही है नारकी की बात विवक्षित स्थान की संख्या प्राप्त की गई है यौ मध्य के लिए टोटल जीवों को तीन गुनाने से भाग दिया ऊपर और नीचे पल्ले गया
हाँ ये भागा का भी छोटा है
तो गुनाने कितने हैं
पावली का संख्या
प्रथम वर्ग क्या संख्या देता यानी वो बहुत छोटी है यानी वो तीन भी ले ले और वो पल्ले का संख्या तो बाकी कितना बड़ा है टोटल नंबर ऑफ वहाँ के जो जीव है हम क्रोध से उपयुक्त नार के ले लिए उसमें पल्ले के असंख्या के भाग बड़ी संख्या उससे भाग देंगे तो जो कम आएंगे वो जघन्य स्थान पर रखते बढ़ते बढ़ते यौ मध्य तक कितने हो जाते हैं
सावली के प्रथम वर्गमूल के
प्रथम वर्गमूल के असंख्या के भाग तीन ले लो
और उससे भाग दो टोटल नंबर है
तो बहुत ज्यादा संख्या आएगी तो उसको यौ मध्य कहेंगे भागहार का उल्लेख मूल में किया ही है भागा भाग का जानकर कथन करना चाहिए भागा भाग यानी वो
कितने
समझ लेना कि कितने जीव ये कितने भाग समान जैसे अभी हमने देखा वहाँ का भागार क्या है पल्ले का असंख्या का भाग तो जो टोटल क्रोध दशा में उपयुक्त है उसके पल्ले के असंख्या के भाग प्रमाण जीव जघन्य स्थान में उपयुक्त इस तरह से जिस स्थान का जो भागार है वो उसका भागा भाग का प्रमाण कहेंगे अब अल्प बहुत उत्कृष्ट उपयोग अद्धा स्थान में जीव सबसे थोड़े उनसे जघन्य उपयोग अद्धा स्थान में जीव असंख्यात गुणे हैं पहले भी बात ये एक बार आई थी गुणकार क्या है पल्लवों के असंख्यात विभाग प्रमाण गुणकार है देखो अभी हम जो भागार की बात की थी, जगन्य के लिए भी पल्ले का संख्या द्वारा, उत्कृष्ट के लिए भी पल्ले का संख्या द्वारा, फिर भी उत्कृष्ट स्थान में जीव कम है तो वहाँ का भागार ज़्यादा होगा, वहाँ जितने जीव है उससे जगन्य स्थान में जीव असंख्या बने, क्योंकि हमने पहले देखा था उत्कृष्ट रूप से उसी स्थान में उसी इन्हें एक कषाय में उपयुक्त होकर लंबे काल तक रहना ये थोड़ा रेयर है, और थोड़े काल में रहना बार बार भले हो जाए तो अधिक लोगों को होगा, उससे अधिक लोग गुणकार क्या है पल्लोकम के असंख्या के भाग में उनसे यो मध्य के जीव असंख्यात गुण है। गुणकार क्या है पल्लोकम के असंख्या के भाग प्रमाण गुणकार उनसे यव मध्य से पूर्ववर्ती स्थानों के जीव असंख्यात गुण है। पूर्ववर्ती स्थानों का अर्थ होता है सभी नीचे के सब मिलकर, यानी जगन्य से यव मध्य तक, यव मध्य के एक स्थान पूर्व तक, तो गुणकार कितना है तो आवली के असंख्या के भाग प्रमाण गुणकार है। उनसे यव मध्य से ऊपरी स्थानों के जीव विशेष अधिक है, क्योंकि वहां ऊपर गुणहानियां ज्यादा है ना, उनसे सब स्थानों के जीव विशेष अधिक है, क्योंकि सब स्थानों के विशेष हैं ऊपर प्लस नीचे सब मिलकर सब स्थानों के जीव है। ये बात ख्याल में आती है मंजू? नहीं आती। हमारे पास जगन्य से लेकर उत्कृष्ट तक ये बहुत स्थान है, एक एक समय काल की प्रवृत्ति बढ़ते हुए इसमें कितने जीव है तो इतने हैं, इसमें इतने 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 करते करते यहाँ इतने हो गए जीवों की संख्या, और ऊपर वो विशेष रूप से यहाँ तक आ गए। तो कहते यहाँ सबसे कम है जीव, इतना बड़ा है यहाँ सबसे कम है, उनसे असंख्यात गुण इस स्थान पर है, उससे असंख्यात गुण बीच वाले स्थान पर है, उससे असंख्यात गुणा नीचे से यहाँ तक के सभी स्थान ये जीव, उनसे विशेष अधिक ये ऊपर के। आप कहेंगे तो बहुत है ना, ज़्यादा ज़्यादा है, परंतु यहाँ तो और कम, उनका प्रमाण कम है, इसलिए वो विशेष अधिक में आएगा, और उनसे सब टोटल जो विशेष अधिक है, इनसे ये विशेष अधिक है और इन दोनों की सबकी टोटल करो तो वो उससे भी विशेष अधिक है, क्योंकि ऊपर के टोटल में ये नीचे मिला दो तो उसका टोटल का प्रमाण है। नरक गति में क्रोध कषाय की मुख्यता से यह प्ररूपणा की गई है, इसी प्रकार शेष कषायों और शेष गतियों में से प्रत्येक को मुख्य कर समस्त प्रकृत प्ररूपणा करनी जाननी चाहिए, इसके बाद उपयोग अध्यास्थान प्ररूपणा समाप्त हुई। एक एक गति में एक एक कषाय में इस तरह से गति हो। अब कषाय उदय स्थानों में उपयोग वर्गणा कहने से कषाय उपयोग अध्यास्थान भी होते हैं और कषाय उदय स्थान भी होते हैं। अभी हमने किसकी बात देखी? अध्यास्थान की, उपयोग अध्यास्थान, उसमें भी नरक गति में क्रोध में उपयुक्त जीवों की अपेक्षा से बात है। अब यहाँ कहते उदय स्थानों की प्ररूपणा करेंगे, एदेहिम दोहिम उपदेशेहिम कषाय उदय स्थानी नेदववाणी सतानम, इन दोनों उपदेशों के आश्रय से कृष जीवों के कषाय उदय स्थान जानने चाहिए। कृष जीवों की बात आई नहीं यहाँ पर, आवर तो अनंत है और उनके जो स्थान हो गए असंख्यात लोग प्रमाण भी कहेंगे, हरेक में अनंत जीव है, हरेक स्थान में कोई ना कोई जीव है, ये तो संभव है कि नहीं? परंतु त्रसों में यह संभव नहीं, क्योंकि स्थान कितने हैं?
असंख्यात लोक,
असंख्यात लोक प्रमाण और सरस्वजीव कितने हैं? अरे जगत पत्थर के असंख्यात
प्रभाव,
जगत पत्थर को एक श्रेणी से गुणा करेंगे तो एक लोक आए और ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण स्थान है और ये कितने हैं? जगत पत्थर का असंख्यात प्रभाव, समझ गए ना? दिख रहा है इसलिए यहाँ त्रसों की बात उठाए। देखो त्रसों जीवों के कषाय उदय स्थान यहाँ जानना है। उपयोग अध्यास स्थानों के विषय में अनंतर कहे गए इन दोनों प्रवाह्यमान और अप्रवाह्यमान उपदेशों के आश्रय से कषाय उदय स्थान जानने चाहिए, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। इन दोनों ही उपदेशों की अपेक्षा प्रकृत में प्ररूपणा भेद नहीं है, इसलिए सदृश इन दोनों उपदेशों के अनुसार भावोपयोग वर्गणाओं की मार्गणा कर लेनी चाहिए, यह उक्त कथन का भावार्थ है। वहाँ जो डिफरेंस था कि उसमें वो सभी गुणहानि स्थान कर्मी जीव है कि नहीं है, वो उपयोग स्थानों की बात है। यहाँ कषाय के उदय स्थानों में ऐसा कोई अलग अलग उपदेश नहीं है। शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, क्योंकि सूत्र में इन दोनों उपदेशों के अनुसार पृथक पृथक विशेष निर्देश नहीं देखा जाता। यहाँ बताए ना यदि इन दो ही उपदेश, सूत्र में बता दिया कि दोनों उपदेश के अनुसार कषाय के उदय स्थान, कषाय के उदय स्थानों को क्या नाम दिया यहाँ पे?
कषाय उपयोग स्थान,
भावोपयोग वर्गणा, भावोपयोग वर्गणा कहो या कषाय उदय स्थान कहो एक ही बात है। एक वो उपयोग अध्यास स्थान है, इसको कालोपयोग वर्गणा कहा था
ये,
और ये कषाय उदय स्थान है, उनको भावोपयोग वर्गणा। किन जीवों के कषाय उदय स्थान ले जाने चाहिए इसकी आशंका होने पर तसाणम पद का निर्देश किया है? त्रस जीवों को अधिकृत कर, यानी उनकी अपेक्षा से यह प्ररूपणा करनी चाहिए, क्योंकि उनसे अन्य स्थावर जीवों की संख्या अनंत है। उनका स्थावर प्रायोग्य असंख्यात लोक प्रमाण कषाय उदय स्थानों में क्या कहते हैं? स्थावर प्रायोग्य ने जो स्थावरों में पाए जाते हैं उनके योग्य, स्थावर के योग्य। हमने यहाँ त्रसों के योग्य कषाय स्थान देखे, स्थावरों में स्थावरों के योग्य जो कषाय स्थान होंगे उनकी जो अपनी रेंज कुछ होगी वो भी कितने, तो असंख्यात लोग समान, और जीव कितने हैं? अनंत। तो यहाँ कहते हैं स्थावर प्रायोग्य असंख्यात लोक प्रमाण कषाय उदय स्थानों में, यानी एक जीव में जो कषाय उदय स्थान हो सकते हैं वो कितने, तो असंख्यात लोक प्रमाण है, उनमें निरंतर रूप से सर्वदा आगमानुसार पाया जाना सिद्ध है। क्या कहते हैं? ये जो कषाय के उदय स्थान है असंख्यात लोक प्रमाण और जीव है अनंत, तो वो सभी उदय स्थानों में कोई ना कोई जीव हो ये बात बनती है। उनमें सर्वदा निरंतर रूप से पाए जाते हैं, निरंतर यानी बीच में एक भी स्थान छूटे बिना अलग अलग जीवों की अपेक्षा वो प्रत्येक एक एक स्थान में जीव पाए जाते हैं, ये वहाँ बताना चाहते हैं। तो उसको कुछ कहना ही नहीं, यहाँ तो कितने स्थान यानी निरंतर है और फिर अंतर है फिर निरंतर है, इस तरह से यहाँ प्ररूपण चलेगी। त्रसों में तो सभी तो स्थान कवर नहीं हो गए, उसमें से कुछ स्थानों में जीव पाए जाएंगे, कुछ स्थान रिक्त रहेंगे, रहित रहेंगे, इसलिए त्रसों की बात यहाँ उठाएंगे। स्थावरों में क्या होगा, जीवों की संख्या इतनी अनंत है
सभी स्थानों में,
अरे सभी स्थान निरंतर रूप से पाए जाए, इसलिए उसका कोई कथन करने का प्रयोजन नहीं रहा। इस प्रकार अनुक्त सिद्ध होने से, अनुक्त सिद्ध होना है जो नहीं बताया वो सहज रूप से सिद्ध हो जाए। बार बार त्रसाणम ये तसाणम ये शब्द डाला है तो स्थावरों को क्यों नहीं लिया, तो उसको अनुक्त रखा हमने, ये उक्त अनुक्त समझते हैं ना, कहाँ शब्द आए थे? तत्वा सूत्र में कौन से विषय में वो क्या है, वो बहुविध क्या है, सामर्थ्य ज्ञान के विषय की अपेक्षा जो 12 वेद गए थे उसमें उक्त और अनुक्त ऐसा एक था, अनुक्त ने जो नहीं कहा है वो अनुक्त सिद्ध होने से तद विषय प्ररूपणा का यहाँ अधिकार नहीं है, यानी उसके बारे में यहाँ प्ररूपणा नहीं की है। एक शब्द ऐसे कुछ वाक्य रखना होती है ना तो हमें ऐसा लगता है क्या लिखा है, स्थावर के बारे में यहाँ प्ररूपणा नहीं है, त्रस्त के बारे में प्ररूपणा चल रही है, इसलिए त्रसों की ओव से प्ररूपणा करने के लिए, यानी यहाँ त्रसों की प्ररूपणा होगी, आगे का प्ररूपणा प्रबंध है, यानी आगे के सूत्र कहते हैं। त्रसों में दिन लिए के तीन लिए ऐसा नहीं, उसमें सबको इकट्ठा करके बात की। तम जहां वह कैसे, यह पृच्छा वाक्य सुगम है। अब इस प्रकार पृच्छा के विषयभूत अर्थ का कथन करते हुए वहां पर सर्वप्रथम कषाय उदय स्थानों के परिमाण का निश्चय करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। ये तो सब हमने पहले भी अन्य अन्य विषय की तरफ से ये बातें आई थी, फिर यहाँ दोबारा उसको ले रहे हैं। कषाय उदय स्थानानि असंख्या लोगा, कषाय उदय स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है। असंख्यात लोकों के जितने आकाश प्रदेश, जब कोई संख्या प्रदेशों में बताई जाती है, यानी क्षेत्र में, प्रदेशों में नहीं क्षेत्र में, जब किसी संख्या का क्षेत्र में वर्णन है तो वहाँ वहाँ प्रदेशों की संख्या गिनना, और कोई संख्या काल में बताएंगे वहाँ समयों की संख्या गिनना। देखो हमें तो जीवों की संख्या बतानी है, अभी अभी कहे कि आवली के असंख्या से भाग प्रमाण भी पाए जाते हैं, एक एक हृदय अध्यय स्थान है, तो वहाँ आवली तो काल का माप है, तो आवली में जघन्य युक्त संख्या प्रमाण जीव होते हैं और उसका यथायोग्य असंख्यात प्रभाग प्रमाण जीव वहाँ, ये बात है। अब यहाँ तो असंख्यात लोग कह रहे हैं, वहाँ तो काल का माप बताया है, यहाँ तो क्षेत्र का माप बता रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र नापने का यूनिट है। तो एक लोक में जितने प्रदेश है उसको हम लोक प्रमाण असंख्या, उसको हमने यहाँ असंख्यात गुणा कर दिया, तो उसमें कितने प्रदेश होंगे उनकी जो संख्या है उतने यहाँ कषाय के उदय स्थान है। हमने माना कि नहीं माना, सर्वज्ञ ने कहा है, पर हम दूसरों के कषाय देख देख कर यहाँ और कषाय सो जाते ना, नाना जीव है तो नाना कषाय के उदय स्थान भी होंगे, और मैं उससे भिन्न हूँ ये मुझ में जाना, हमें ऐसा लगता है ना, उसको इतना कसाई क्यों आता है, हमको कम आता है, उसको भी उतना ही कम आना चाहिए ना, नहीं कम
हमारे अनुरूप उसका परिणाम होना है ऐसे उसको,
और हम कसाई के उदय स्थानों पे पलटाना चाहते हैं, हम उनसे रहित है ये बात नहीं एक्सेप्ट कर, हम कम करना चाहते कि नहीं कसाई उनको, मैं तो हमेशा कहते अरे कम करने की बात आपके हाथ में है तो करो ही मत ना निकाल देने की कहाँ बात है, और कषाय स्वभाव को हम देखते रहेंगे तो कषाय उत्पन्न नहीं होंगे, ये तरीका है, वो तो दुनिया जानती नहीं है, वो तो कषाय कम करो की बात करे,
तो क्या कभी समय दृष्टि से इसे कम करने की बात होगी नहीं,
उसको वो तो आने वाले कषायों को जान रहा है और उसके उसको विकृतिशील भी हो रहा है,
कहाँ अटकाऊँ ये बात, सोच भी नहीं आएगी कि
अरे मैं कर ही नहीं सकता ये बात, उसने निश्चित किए नहीं पहले, ऐसा होगा अरे मैं ये कहाँ अटका, ये बात होगी सुबह में भी होगी, केवल अशुभ में नहीं, सुबह को भी अपराध का है तुम्हें, तो सुबह में भी मैं कहाँ अटका हूँ, इसको तो बार बार लगनी किसकी अपने स्वरूप स्थिरता की, यानी ये जो बीच में अभी न्यूट्रल होना चाहिए, कभी शुभ की ओर कभी अशुभ की ओर, फिर ज्ञान रूप नहीं, वृत्ति का उठना उसको जो कहेंगे क्या समय दृष्टि को होता ही नहीं,
नहीं वृत्ति तो उठेगी पर वो उसको झाड़ता रहता है।
नहीं, जब दो प्रयोग जिसको हम कहेंगे वो ज्ञानमय पना में वहाँ है, भले वो राग उठेंगे पर वो तो अभी अबुद्धि पूर्वक नहीं चलेगा। जिसको स्थूल उपयोग में जो बातें आती है वो तो उसकी मिट जाती है, शुद्ध उपयोग के काल की बात है। और अन्यथा भी जो है तो उसने तो अनुभव कर लिया है तो उसको पता ही है, तो सुबह से भाव उठे है वो ज्ञान का गे वो मेरा स्वरूप नहीं है। चल अपना विषय प्रश्न है तो इसलिए बारहवीं गाथा कुंकुंडाचार्य ने भी ग्यारहवीं गाथा के बाद इमीडिएट बारहवीं गाथा में क्यों कहा, जाने लो प्रयोजन इन्हें जो जिस भूमिका के योग्य राग आते हैं वो जीव का ज्ञान का यही है, वो होता ही नहीं ऐसी बात नहीं, वो है वहां पर जान भी रहा है तो अपनी कथा कितनी बाकी वो पता चलेगा कि नहीं चलेगा, अपने में किस टाइप के राग द्वेष उत्पन्न होते हैं उसके अनुसार उसके अनुमान है ना, हम अभी यहाँ कहाँ करें। यानी जब हमने कुछ दाल वाल चढ़ाई है गैस के ऊपर रखी है सीजने को तो हम निकाल के देखते हैं तो कितनी कचास अभी बाकी है वो देखना कि नहीं देखना,
देखना तो पड़ेगा।
तो अपने में उठने वाले राग अपनी किस भूमिका में खड़े हैं उसकी उसका पता चलेगा कि वो तो ज्ञान का ये है तो जाने लो प्रयोजन मान का, यहाँ बात अलग है। देखो यहाँ तो जो
खेत उठता है पर वो खाली समझ के लिए
गाथा में सब है जाने लो प्रयोजन मान
जाने
वो प्रयोजन कुछ है ही नहीं उसको जाना ही मत, वो नहीं है जानने के लिए। हाँ
आप बोल रहे हैं ना समय किसी को राज उत्पन्न करने में इच्छा होती है नहीं होता,
हाँ तो वही मेरा क्वेश्चन था, सभी व्यक्ति को भी उत्पन्न तो हो गया इराद
होगा ना, नहीं तो वो विचार हो जाएगा बिल्कुल उसके बारे में हम कहाँ यहाँ अटके हैं बार बार अस्थित रूप ख्याल है इसको, बीमारी के लिए दवा लेता है तो दवा लेने में अच्छा समझता है कि वो कब मैं ये छोड़ दूँ, नहीं समझता करे तो यहाँ क्या है कषाय उदय स्थान असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात लोगों के जितने आकाश प्रदेश हैं, हमने ये बात बताई कि जहाँ क्षेत्र में संख्या बताई जाती है वहाँ उसमें जितने प्रदेश है उसको लेना। जब हम अंगुल कहते हैं अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण काल बीत गया कहेंगे तो अंगुल के असंख्यात विभाग में प्रदेशों की संख्या कितनी है तो उन प्रदेशों की संख्या को हम समयों की संख्या में ट्रांसफर करेंगे तो कितने होते असंख्या का संख्या था उससे बीत जाए इतना लंबा काल तो असंख्यात लोक में अभी अंगुल के असंख्यात विभाग में इतने तो अंगुल में कितने हो गए ये अंगुल में कितने हो गए तो पूरे लोक में कितने हो गए फिर वो अनंत नहीं असंख्यात और ऐसे असंख्यात लोग इतने कसाय उनके उदय स्थान है यह उससे कसम का तात्पर्य है कौन सा कसाय करना चाहिए पूछ रहे हैं और ये कसाय उनके उदय स्थानों में क्रम से ये जो हमने भाव परावर्तन और वो अकेला कसाय उदय स्थान नहीं है उसमें स्थिति का प्रमाण लेना स्थिति बंद के स्थान अलग अलग स्थिति एक एक समय से बढ़ती हुई स्थिति स्थिति के कारणभूत कषाय के स्थान उसमें कारणभूत अनुभव अध्यवसाय स्थान और उसमें कारणभूत योग के स्थान इन चारों के जो असंख्यात असंख्यात प्रकार है सबको क्रम से रखो, और जैसे हमने प्रमाद के भेद देखे वैसे अक्ष परिवर्तन करो। तो कितना और बीच बीच में बिना क्रम के कितने ही काल बीत जाएगा, क्योंकि एक एक क्रम से स्थानों का परिवर्तन नहीं होता है, जंप होकर कहीं अन्य अन्य स्थानों पे चला जाता है, तब जाके एक भाव परिवर्तन पूरा हुआ। जब क्रम से अनुक्रम से सभी एक एक स्थान पर चला जाएगा, वे सबसे अनुक्रम, क्योंकि एक भाव परिवर्तन के बाद दूसरा भी होता है ना, उस अपेक्षा से ऐसे अनंत भाव परिवर्तन हो चुके हैं, उसको अक्षय कहेंगे तो दूसरा भाव परिवर्तन होने का सवाल ही नहीं ना। ये जो मैग्नीट्यूड है ना उसका, यूजने काल कितना बिताया है, कैसे कैसे परिणाम है, ये जब तक एहसास नहीं होता ना अंदर से, तब ये बाहर की मजा ही मजा लगती है, उसमें से छूटने का मन नहीं होता। उसको भोगो उसको भोगो उसको भोगो उसको जाने उसको ये करो वो करो, उसी में भी लगा। वे कषाय उदय स्थान जघन्य स्थान से लेकर उत्कृष्ट स्थान तक कितने हैं, तो असंख्यात लोक प्रमाण, परंतु ये जो असंख्यात लोक प्रमाण स्थान है वो किस रूप से कितना, एक एक अभिवाकृति से ज्यादा है क्या क्या है, तो कहते छह वृद्धियों के क्रम से अवस्थित, यानी पहला जो स्थान है उसके अनंत भाग वृद्धि अनंत भाग वृद्धि अनंत भाग वृद्धि, वो ऊचार 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 वैसे जो होते हैं, तो एक बार अनंत गुण वृद्धि एक स्थान हुआ छठान, फिर दूसरी बार अनंत गुण वृद्धि दूसरा छठान तीसरा छठान, ऐसे छठान भी असंख्यात लोग को माने त्रस्त के पीछे, और एक एक छठान जब देखते हैं तो छठान का अर्थ क्या है, एक एक छठान में कितने स्थान होते हैं, पांच बार वन प्लस आवली का संख्या का भाग रखकर गुना करो, इतने स्थान एक छठान में होते हैं, और ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण संस्थान हो गया इतने स्थान, उनमें से सर्वप्रथम वर्तमान समय में, वर्तमान एक समय की बात, ये सब जो स्थान है इतने बता रहे हैं वो तो अतीत काल में उसकी अपेक्षा के लिए, एट अ टाइम युगपत ये सभी स्थान जीवन से अपूर्ण नहीं हो गए, हो ही नहीं सकते, ये सभी स्थान जीवों से सहित हो एट अ टाइम ये बात नहीं हो सकती, त्रस्त जीवों से सहित एक इंद्रियों में बात घटित हो सकती है, क्योंकि वो जीव अनंत है, यहाँ जीव कितने हैं, जगत प्रतर के असंख्यात भाग और स्थान है असंख्यात लोक प्रमाण, तो प्रत्येक स्थान में एक एक भी जीव रखो तो भी ये पॉसिबल नहीं है कि सब में जीव पाएगा। क्या, हाँ उनके कषाय उनके योग्य जो कषाय, इसलिए उसके एक इंद्रियों के प्रायोगिक शब्द डाला स्थावर प्रायोगिक स्थान, उनकी अपनी रेंज संकलेश की विशुद्धि की वो अलग है, परंतु उनके भी है असंख्यात लोक प्रमाण, अपने असंख्यात लोक प्रमाण।
तो यहाँ पे तो हमने आगे तो देखा था कि जो उत्कृष्ट उदय स्थान उत्कृष्ट वाला जो स्थान है उसको प्राप्त करने के लिए कोई भी जीव नहीं है तो असंख्यात लोक प्रमाण काल जाता है, तो वो इतना काल
सिद्ध होता है ना कि एक एक स्थान में वो कितने स्थान रिक्त हो गए, उत्कृष्ट अंतर बताए वहाँ पर। देखो यहाँ क्या कहते हैं, वर्तमान समय में त्रस जीवों के द्वारा कितने उदय स्थान अपूर्ण है, अपूर्ण ने सहित है, और कितने शून्य हैं, शून्य स्थान है, इस प्रकार इस विषय का निश्चय करने के लिए आगे का सूत्र आया, तेसु जत्तिया तथा तत्यमेतानि आउन्नानि, उनमें से जितने त्रस जीव है उतने स्थान त्रस जीवों से अपूर्ण है, यानी एक एक स्थान में एक एक जीव रखेंगे तो जितने त्रस जीव है उतने स्थान अपूर्ण है कहेंगे, उन असंख्यात लोक प्रमाण त्रस प्रायोग्य, त्रस प्रायोगिक शब्द डाला ना पहले, स्थावर प्रायोगिक शब्द आया था, त्रस प्रायोग्य उदय स्थान स्था करना, नाश्ता हुआ, क्या कहते हैं, उन असंख्यात लोक प्रमाण त्रस प्रायोग्य उदय स्थानों में से वर्तमान समय में कितने ही स्थान त्रस जीवों से आपूर्ण हैं, इस विषय का विचार करने पर जितने त्रस जीव हैं उतने ही कषाय उदय स्थान त्रस जीवों से आपूर्ण प्राप्त होते हैं, क्योंकि एक एक कषाय उदय स्थान में एक एक ही त्रस जीव का कदाचित अवस्थान संभव है। कदाचित यानी बाय चांस ऐसा हो सकता है कि हर एक का अपना अपना उदय स्थान अलग हो, तो कितने उदय स्थान आपूर्ण है, तो कहते जितने त्रस जीव है उतने स्थान आपूर्ण है, कदाचित संभव है कहते हैं, केवल शिक्षण की बात है। इतनी विशेषता है उतने सब उदय स्थान एक एक जीव के द्वारा निरंतर रूप से अधिष्ठित होकर नहीं प्राप्त, यानी वे स्थान निरंतर यानी पहला दूसरा तीसरा दूसरा बिल्कुल एक 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 बढ़ते हुए ही हो गए, ये बात नहीं हो सकती, किंतु निरंतर का अर्थ समझते, जैसे हमने काल के स्थानों के निरंतर हर एक स्थान में कितने कितने उसकी बात, अब कषाय के उदय स्थान भी ऐसे रखो, तो पहले में जीव हाँ टिक करो, दूसरे में टिक करो, तीसरे में टिक करो, तो लगातार इतने स्थानों में है, फिर ऊपर के कितने स्थानों में नहीं है, फिर यहाँ है, फिर वहाँ नहीं है, फिर है इस यहाँ यहाँ पर भी होगा, तो निरंतर का अर्थ है लगातार एक 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 स्थान में है ऐसे कहाँ तक हो सकता है, कितने स्थान निरंतर रूप पाए जाएंगे, निरंतर यानी काल की अपेक्षा मत लेना, निरंतर अर्थात एक ही समय में बात चल रही है, कितने ही स्थानों में जीव है, अब निरंतर यानी हम देखें ना, हमने यहाँ इतने ही तो यहाँ एक दो तीन में है, एक ऊपर नहीं है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ पर है, फिर ऊपर नहीं है, फिर यहाँ पर है जीव, तो ये निरंतर स्थान, एक ही समय में कितने निरंतर स्थान, स्थानों को निरंतर का छूटे है, ये कषाय उदय स्थान में कोई जीव नहीं है ऐसा भी, जो छूटे है इसीलिए इसको निरंतर कहा, निरंतर कहाँ तक है, यहाँ तक, फिर बीच वाले स्थानों में कोई जीव नहीं है, ऊपर के कुछ स्थानों में लगातार है, हर एक स्थान कवर किया है, तो जब तक हर एक स्थान कवर होगा उसको निरंतर कहें, समय की अपेक्षा निरंतर नहीं, स्थानों की अपेक्षा निरंतर, हाँ पहला स्थान हमें स्थानों को नंबर देंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो कहाँ तक के स्थान, बट एट टाइम ये सभी स्थान है, फिर उसके ऊपर वो स्थान से कवर नहीं रहेगा, शून्य स्थान होगा, तो कहते किंतु उत्कृष्ट रूप से हो सकता है एक स्थान में नहीं है, वो तो जगहने में एक ही स्थान होकर फिर अंतर हो जाएगा, तो उत्कृष्ट रूप से आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण ही जीव सहित निरंतर स्थान पाए जाने का उपदेश है, जीव सहित निरंतर स्थान यानी पहले स्थान में है, दूसरे में है, तीसरे में है, कंटिन्यूस कितने स्थानों में जीव पाए जा सकते हैं, अधिक से अधिक आवली के असंख्यात विभाग, उसके बाद बीच में शून्य स्थान आएगा ही आएगा, संख्या नहीं है स्थान, कितने स्थानों में जीव है बस इतनी बात, कंटिन्यूस स्थान उदय स्थान जगन्य से हमने शुरुआत की, टिक करते जाओ, जहाँ जहाँ जीव है उसको टिक करो, तो लगातार कितने स्थानों में जीव है, तो कहते आवली के असंख्या, वो भी उत्कृष्ट रूप से,
यहाँ पे हमने एक एक उदय स्थान में एक एक जीव लिए, वो अपेक्षा
वो भी लेंगे तो भी इतने ही जीव होंगे, उसकी संख्या वहाँ भी संख्या ही लेना, यूनिट हम क्षेत्र में बताए या काल में, हमारा प्रयोजन तो संख्या से है, आवली के असंख्या के भाग में जितने समय है उतने स्थान लगातार जीवों ने अशुपाय किए हैं, आपूर्ण है, फिर बाद में शून्य स्थान होगा, ये भी जो संख्या बताई वो अधिक से अधिक बताई, हो सकता है कंटिन्यूस तीन ही स्थान है, फिर वहाँ एक शून्य स्थान आ जाएगा, जगन में रूप से एक ही स्थान है और एक शून्य स्थान आ जाएगा, इसलिए सांसर निरंतर क्रम से यानी वर्तमान समय में कुछ स्थान तो लगातार हो गए, फिर बीच में गैप होगी, वहाँ कोई जीव नहीं हो गए उस स्थान में, फिर ऊपर के कषाय स्थानों में जीव हो गए, तो बीच में जहाँ शून्य स्थान है वहाँ कहेंगे स्थान तक, और फिर कंटिन्यूएशन में आएंगे तो वहाँ कहेंगे निरंतर। तो ये सांतर निरंतर क्रम से त्रस जीवों की संख्या प्रमाण ही कषाय उदय स्थान त्रस जीवों से आपूर्ण है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। ये कब पॉसिबल है? जब एक स्थान में एक जीव हो, एक स्थान में एक जीव है फिर भी सभी स्थान कवर नहीं होते, कंटिन्यूएशन में फिर बीच में गैप है, नहीं अंतर है, फिर निरंतर है, फिर अंतर है, फिर निरंतर है, फिर अंतर है। इस प्रकार सर्वप्रथम वर्तमान काल की अपेक्षा त्रस जीव प्रमाण स्थान जीवों से आपूर्ण है इस बात का कथन कर अब अतीत काल की अपेक्षा सब कषाय उदय स्थानों में अवस्थान क्रम को दिखलाने के लिए आगे के प्रबंध को कहते हैं। अतीत काल में तो सभी उदय स्थान हो गए होंगे, हमने तो एक जीव की अपेक्षा भी क्रम से बताए हैं, भाव परिवर्तन। तो यहाँ तो अतीत काल में सभी उदय स्थानों की अपेक्षा बात करें। कषाय उदय स्थानेषु जव मध्येन जीवारान्ति, कहीं कहीं एम की ऐसा पाठ है नीचे लिखा है, कषाय उदय स्थानों में जीव यव मध्य के आकार से रहते हैं। जीव रहते का अर्थ है क्या है? अतीत काल के ने अभी अतीत जो काल हो चुका है उसकी अपेक्षा बात है। तो जघन्य जो कषाय उदय स्थान में और उत्कृष्ट कषाय उदय स्थान, तो अतीत काल में कितने जीवों ने अभी तक तो अनंत जीव हो गए ना, फिर भी उसमें वेरिएशन होगा कि नहीं होगा? मिनिमम जीवों ने वो स्थान ऑक्युपाई किया था कि मैक्सिमम, तो उसमें यवाकार रचना होती थी। यानी ऐसे कोई उदय कषाय उदय स्थान है कि जिसमें जीव ज्यादा प्रमाण में आते हैं, उसको मध्यम परिणाम है, मध्यम एग्जैक्ट मध्यम ऐसा नहीं लेंगे, ये मध्य वाले पढ़े हैं
तो भाव परिवर्तन की अपेक्षा तो हम लोग भी सभी परिणाम करते हैं,
सभी परिणाम क्रम से करे आए, पर उसमें से कुछ परिणाम बहुत बार किया होगी ना। जब आपने एक जीव की अपेक्षा उठाई है तो आपने जघन्य परिणाम बहुत बार किया कि उत्कृष्ट परिणाम बहुत बार किया कि बीच वाले बहुत बार तो असंख्यात लोक प्रमाण कषाय उदय स्थानों में अतीत काल की अपेक्षा त्रस जीवों का अवस्थान क्रम कैसा है ऐसे पूछने पर यव मध्य रूप से जीव रहते ऐसा निर्देश किया। और इस प्रकार कषाय उदय स्थानों में यव मध्य रूप से जीवों का अवस्थान है ऐसी प्रतिज्ञा करके अब यव मध्य की प्ररूपणा करने पर वहाँ ये छह अनुयोग द्वार ज्ञातव्य है। यव मध्य की प्ररूपणा में छह अनुयोग द्वार है, प्ररूपणा से लेकर अल्प बहुत्व तक, उनमें से प्ररूपणा की अपेक्षा जघन्य कषाय उदय स्थान में जीव हैं, बस है बता दिया। ये किसकी बात चल रही है? अतीत काल की अपेक्षा। इसी प्रकार उत्कृष्ट कषाय उदय स्थान तक प्रत्येक कषाय उदय स्थान में जीव है। मंजुबेन अभी अभी तो बताया था कि प्रत्येक में नहीं जीव रह सकते, और अभी कह रहे कि बहुत अच्छा अतीत काल की अपेक्षा बात चल रही है, तो हरेक कषाय उदय स्थान जीवों ने उपाय किया। प्रमाण जघन्य कषाय उदय स्थान में जीव जघन्य से एक या दो से लेकर उत्कृष्ट रूप से आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण है। द्वितीय स्थान में भी जीव उतने ही है। इसी प्रकार उत्कृष्ट स्थान में भी जीव आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण है इस स्थान के प्राप्त होने तक कथन करना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं?
अतीत काल की अपेक्षा
इसलिए लिया मैं, मुझे अभी ये बात समझ में आई। अभी तक अगर प्रत्येक स्थान देखो तो अनंत जीवों ने कवर किया, परंतु ऐसा नहीं है, किसी न किसी काल में वहाँ जीव थे एट ए टाइम, तो कितने थे?
अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीव
एट वन टाइम, मैक्सिमम नंबर कभी भी हो, तो उसकी हाँ दूध काल
क्योंकि किसी अतीत की अपेक्षा तो सभी
स्थान में सभी में आनंद जी हो क्योंकि प्रत्येक स्थान कभी न कभी किसी न किसी क्योंकि प्रत्येक जीव के भाव परिवर्तन आनंद भाव परिवर्तन उसकी बात नहीं है। तो यहाँ तो बात है कि वो स्थान अधिक से अधिक कितने जीव ने वहाँ अच्छा किया था तो हमने देखा था उसमें अधिक से अधिक कितने जीव हो सकते हैं तो अवधि के स्थान करते थे किसी भी स्थान में एट अ टाइम। देखो यानी जब हम देखते ये स्थान पर निरंतर जब इसमें जीव थे तो अधिक से अधिक कितने थे कम से कम तो एक जीव की अपेक्षा बात हो गई वो तो हमने बता दी। अब यहाँ कुछ नहीं है यहाँ पर है ऐसा कोई काल आएगा कि यहाँ पर भी जीव है तो सब वहाँ अधिक से अधिक कितने होंगे तो आवली के अर्थन कर देगा। तो ऐसे हर एक स्थान अब तक कवर हो चुका है और उसमें जब जीव पाए जाएंगे अधिक से अधिक तो कितने हो गए तो आवली के अर्थन कर देगा एक समय में एट ए टाइम सब में नहीं होगी एक स्थान पे किसी एक समय में अधिक से अधिक आवली के अर्थन करते डॉक्टर मानती है
द्वितीय विकल्प के जीव कितने अनंत है ना
अभी उसके बाद कहाँ आई यहाँ पर
नहीं बे,
अभी
ये क्या सोच रहा वो जीव ने तो कभी भाव परावर्तन कंप्लीट किया ही नहीं क्योंकि
क्या है ये प्रश्न परावर्तन के इसमें भी आए कि वहाँ उन्होंने अन्य भाव किए नहीं है
द्वितीय विकल्प
तो उतना काल उन्होंने
नहीं उनका काल तो गया है पर सभी भाव उन्होंने किए नहीं है
सभी भाव नहीं किए है परंतु भाव परिवर्तन में तो हम
काल गिने हैं
उतना काल उन्होंने उसी पर्याय में बिताया जो अन्य जीव अन्य रूप से बिताए जिस जीव ने भाव परावर्तन में जितना काल बिताया है उतना अनंत काल उसने उसी निगोद पर्याय में बिताया परिणाम को नहीं परिणाम गिन के हमको गिनना तो
काल की
हमें तो काल ही गिनना है एक एक परिणाम की इतना नहीं बताना था बीच बीच में अनंत काल गया है जब कंटिन्यूएशन में अनुक्रम से परिणाम नहीं होता तो हर एक परिणाम के बीच में कितना काल ऑलरेडी गया है उसको भी काउंट कर रहे वहाँ पर नहीं तो उन परिणामों को भी गिनना चाहिए था उसको तो नहीं गिना है हो सकता है ना भाव परिवर्तन चल रहा है पंचेंद्रियों के योग्य भाव देख रहे हैं और वो जीव निगोद में चला गया है एक इंद्रिय में असंख्यात कुशल परिवर्तन काल चल रहा है एक इंद्रिय में रहा तो वो बीच में गिनना कि नहीं गिनना एक अनंतता ख्याल में नहीं आती है। देखो अभी द्वितीय स्थान में भी जीव उतने ही है इसी प्रकार उत्कृष्ट स्थान में भी जीव आवली के असंख्यात भाग प्रमाण है इस स्थान के प्राप्त होने तक कथन करना ये तो प्ररूपणा है हर एक स्थान में आवली के असंख्यात भाग प्रमाण बताए इस प्रकार ये दोनों ही अनियोग द्वार सुगम है कौन से प्ररूपणा और प्रमाण इसलिए इनका सूत्र में कथन नहीं किया अब श्रेणी का कथन करने के लिए आगे के प्रबंध को कहते हैं जहन ने कसा युदय स्थाने कसा थोवा श्रेणी ने पंक्ति रूप रचना बताएंगे जघन्य कषाय उदय स्थान में त्रस जीव सबसे स्तोक है वहाँ सबसे उत्कृष्ट उपयोग अध्यास स्थान में सबसे कम हो रहता है वहाँ तो काल की प्रवणता चल रही है लगातार कितने काल तक उसी कषाय में उपयोग करें तो उसमें सबसे उत्कृष्ट काल तक उपयोग करने वाले सबसे कम लिए थे और जगह में उसके असंख्यात गुणे जीव देखे अब यहाँ क्या कहते हैं जघन्य कषाय उदय स्थान में जीव सबसे अल्प है कल में ना डिफरेंस हाँ क्योंकि सबसे जघन्य संकलेश रूप से परिणमन करने वाले बहुत जीव नहीं पाए जाते हाँ थोड़े पाए जाते इसलिए सबसे स्तोक्त है शंका इनका प्रमाण कितना है समाधान ये आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण
ये एक समय हाँ। की बात कर रही है आवली के असंख्यात वे भाग
हाँ
क्योंकि जगन्य में जगन्य परिणाम तो मनुष्य दशा में होगा संकलेश रूप जगन्य संकलेश रूप परिणाम वो तो मनुष्य में ही होगा तो वहाँ पे अवली के संख्या के पास प्रमाण जीव हो सकते हैं
तो आप मनुष्य को क्यों ले रहे हैं
नहीं क्योंकि जगन में संतुलित कहाँ पे होगा, जिसकी विश्व की एकदम बढ़ती
है। कषाय के उदय स्थानों की बात चल रही है यहाँ पर, तो यहाँ जो जघन्य संकलेश रूप परिणाम में भी आवली के असंग वो भाग प्रमाण जीत रहे हैं, तो वो होगे तभी बताएंगे कि नहीं होगे तब बताएंगे।
नहीं,
मनुष्य में होते तो कैसे बता
सकते? नहीं, वो नहीं बता सकते थे, पर वो कषाय उदय स्थान में ये
मनुष्य में होते ऐसा नहीं, ये तो परम गुरु का उपयोग क्या है, तो जघन्य स्थान में आवली के असंग क्या भाग प्रमाण जी है, वही तो कहते हैं। उसी से सिद्ध होता है कि आपने जो बताया कि मनुष्यों में ही होते हैं, ऐसा वहाँ नहीं
है। जगत या संकलेश भी विशुद्धि की ज्यादा ऐसे हम लोग ले सकते नहीं,
उसका तात्पर्य मत निकालो, तात्पर्य मत निकालो, यहाँ जो कथन है उसके अनुसार कर सकते। जब आवली के असंख्या से भाग समान जीव होते है बता दिया तो वैसा कर, नहीं नहीं वो तो विशुद्धि परम विशुद्धि बात देख रहे। देखो पूछ रहे हैं किस प्रमाण से जाना जाता है, तो परम गुरु के उद्देश्य से जाना जाता है। शंका, यदि यह यवमध्य प्ररूपण अतीत काल विषयक है तो जघन्य कषाय उदय स्थान में अनंत रस जीव होने चाहिए। अभी हमने देखा था ना अतीत काल है तो अनंत, हर एक स्थान में अनंत कहो। समाधान, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए क्योंकि अतीत काल विषय एक समय में उत्कृष्ट रूप से आवली के असंख्यात वे भाग से अधिक रस जीव उक्त स्थान में परिमण करते हुए नहीं पाए जाते, उससे अधिक नहीं, आवली के असंख्या के भाग मैक्सिमम पाए जा सकते हैं। देखो पहले भी ये तो बात अभी हमने पढ़ी, पर जब उन्होंने बता दिया एक समय में आवली के असंख्या के भाग, तब हमने वैसा सोचा कि क्या हो सकता है कि एक समय की बात होनी चाहिए, क्योंकि तो पूरा अतीत काल ले तो अनंत जीवित हो गया, इसलिए अतीत काल विषय एक समय के उत्कृष्ट संचय जब कभी हुआ होगा उसको कहेंगे अतीत काल विषय, और कितने समय के बाद एक समय के उत्कृष्ट संचय को यानी वहाँ मैक्सिमम कितने जीव हो गए उसको ग्रहण कर यह प्ररूपणा प्रवृत्त हुई है, इसलिए कुछ भी विरुद्ध नहीं है। यही रुकना पड़ेगा,
जावानी की ज्ञान से सुझे लो पालो सोवानी मस्तक नमो सदा देतो।
नमो यंतानम नमो सिद्धानम नमायनम नमो उद्यानम नमो लोहे सुप्रतानम नमो यंतानम नमो सिद्धानम नमायनम नमो उद्यानम नमो लोहे सुप्रतानम नमो यंतानम नमो सिद्धानम नमायनम नमो उद्यानम नमो लोहे सुप्रतानम नमो यंतानम नमो सिद्धानम नमायनम नमो उद्यानम।